जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, प्रभुपा, जय जय प्रभुपा, जय जय प्रभुपा, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव,
पाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिवमान हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। समावेत भक्त विंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज श्रीमद्भागवतम दसवां कैंटो चैप्टर 3 श्लोक नंबर 12 के ऊपर चर्चा करेंगे। अथैनाम शोध अवधार्या पुरुषाम परम नताग्ना कृतादिहि कृतांजलये। परम नताग्ना कृतादिहि कृतांजलि स्वरोचिषा भरता सूतिका गृहाम् विरोचयन्तं गताभिः प्रभाववित् अथैनाम् अस्तौ अवधार्या पुरुषाम् परम नतात्मनः कृताभिः कृताञ्जलि वरोऽसि च भरता सुप्तिका गृहाम् विरोचयन्तं गताभिः प्रभवावि अथै नमस्तौ दवदार्य पुरुषाम् परं साङ्गाकृताभिकृताञ्जलि वरोचिता भारता स्थिता गृहाम् विरोचयन्तं गतभि प्रभावभि अतै नमस्तौ गवदार्य पुरुषम् परं नतदीकृताञ्जलि परोचिता भारतस्य प्राणम् विरोचितन्तं गतभीतभावभि अतै नमस्तो रवदाय पुरुषम्
परमताङ्गकृतिदीपिताञ्जलिः
स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहम् विरोचयन्तं गतभि प्रभावभि
अथ तत्पश्चात्
एनं
ಏನು
ಬಾಲಕು
ಬಾಲಕು
ಹಸ್ತೋ
ಹಸ್ತೋ
ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಪಿತ್ಯ
ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಪಿತ್ಯ
ಅವಧಾರ್ಯ
ಅವಧಾರ್ಯ
ನಿಶ್ಚಯ
ಕರ್ತಿ
ಬಾಲಕ್ ಭಗವಾನ್ ತಾ
ಬಾಲಕ್ ಭಗವಾನ್ ತಾ
ಪುರುಷಂ
ಪುರುಷಂ
ಪರಂ ಪುರುಷ್ಕೋ
ಪರಂ ಪುರುಷ್ಕೋ
ಪರಂ
ಪರಂ
ಪರಂ ದಿವ್ಯ
ಪರಂ ದಿವ್ಯ
ನತಂಗ
ನತಂಗ
ಗಿರ್ಕರ್
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 ಕೃತಧಿ
ಕೃತಧಿ
ಏಕಾಗ್ರ ಹೋಕರ್
ಏಕಾಗ್ರ ಹೋಕರ್
ಕೃತಾಂಜಲಿ
ಕೃತಾಂಜಲಿ
ಹಾತ್ ಜೋಡ್ಕರ್
ಹಾತ್ ಜೋಡ್ಕರ್
ಸ್ವರೋಚಿಷಾ ಅಪ್ನೆ ಶಾರೀರಿಕ
ಅಪ್ನೆ ಶಾರೀರಿಕ
ತೇಜ್ ಸೆ
ಸೌಂದರ್ಯ ಕೆ ತೇಜ್ ಸೆ
ಭಾರತ
ಭಾರತ
ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್
ಓ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್
ಸ್ತುತಿಕಾ ಗೃಹಂ
ಸ್ತುತಿಕಾ ಗೃಹಂ
ವಹ ಸ್ಥಾನ ಜಹಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ
ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ
ವಿರೋಚಯಂತಂ
ವಿರೋಚಯಂತಂ
ಚಾರೋ ಓರ್ ಸೆ
ಚಾರೋ ಓರ್ ಸೆ
ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ
ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ
ಗತಧಿ
ಗತಧಿ
ಭಯ ಸೆ ರಹಿತ ಹೋಕರ್
ಭಯ ಸೆ ರಹಿತ ಹೋಕರ್
ಪ್ರಭಾವವಿ
ಪ್ರಭಾವವಿ
ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಕೋ ಜಾನ್ ಸಕಾ
ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಕೋ ಜಾನ್ ಸಕಾ
ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ
ಜಯ
हे भरतवंशी महाराज परीक्षित वसुदेव यह जान गए कि यह बालक भगवान नारायण है इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए हाथ जोड़े मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव से अपने जन्म स्थल को जगमग कर रहा था तात्पर्य इतने महान आश्चर्य से चकित वसुदेव ने अब अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया वे भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भय हो गए क्योंकि वे जान गए कि मेरी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं गतवि प्रभाववित यह जानकर कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं उन्होंने निम्नवत समुचित स्तुति की
धन्यवाद प्रभुजी ओम ज्ञान तिम्रांडस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹಗನಾ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗನಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಂ ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೇ ರಾಧೇ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತನಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतेश्वर कृपा कृष्ण हरे कृष्ण। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जहां पर भगवान कृष्ण का इधर अपीयरेंस हुआ, इधर बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण बताते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म जो है हम बाकी जो भौतिक जो हम जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने इच्छा से आते हैं। यहाँ पर जब भगवान आ रहे हैं इधर महाराज परीक्षित को बताते हैं, जब वसुदेव जी जो भगवान को देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होने के साथ साथ दूसरे एक और शब्द बताते हैं इधर फियरलेस। जैसे भगवान सामने आ जाते हैं प्रसन्न होके, कोई भयभीत नहीं है। और उसके बाद वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और स्तुति गाते हैं उनके। ये बहुत सौभाग्य बात है, होता है कि भगवान किसी के वंश में आके जन्म लेते हैं। और ये द्वापर युग की बात चल रहा है उस समय। द्वापर युग में भगवान को क्यों आना पड़ा इसे? भगवान को क्यों आना पड़ा? भगवान बताते हैं भगवद गीता में साफ साफ बताते हैं, जब भी कुछ इरिलीजियस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दुष्कृत ना जो मिसक्रियंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो भगवान खुद आते हैं उनको दंड देने के लिए। लेकिन भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं होता है। एक्सटर्नल बात यह है कि भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम, मैं आता हूं जो साधु जो मेरे भक्त प्रिय भक्त है उनको उद्धार करने के लिए आता हूं, उनको बचाने के लिए आता हूं, और दुष्कृत जो मिसक्रेंट्स हैं उनको नाश करने के लिए आता हूं। ये भगवान बताते हैं। लेकिन इंटरनल रीजन क्या है? भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं होता इनको जो डीमंस जो दुष्कृत होते हैं उनको निकालने के लिए। वो खुद भगवान जो उनके अंदर जो परमात्मा के रूप में है वो चुपचाप वो बाहर चले जाएंगे, खत्म। भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इंटरनल चीज ये है कि भगवान इसलिए आते हैं ताकि भक्त के साथ जो जो उनको जो आनंद मिलता है, जो उनको जो रसा मिलता है, उसके वजह से आते हैं। भगवान के पास सब कुछ है एक चीज छोड़ के, वो क्या है? क्या नहीं है भगवान के पास? क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ है, क्या नहीं? कोई ऐसा चीज है? एक चीज नहीं है भगवान के पास, क्या है? हमारा प्रेम उनके लिए। भगवान इसी के लालसी हैं, नहीं तो भगवान हम सबको एक साथ उठा के ले जा सकते हैं, क्या फायदा होता उससे? लेकिन भगवान हमारे प्रेम के लालसी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उस समय भगवान क्यों आए थे? भगवान इसलिए उस समय आए थे, उस समय जैसे शुक्राचार्य जैसे हम लोग सब जानते हैं, उनके पास जो 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 दायित्वों का गुरु शुक्राचार्य, उनके पास संजीवन मंत्र था, तो उसे ये जो दानव लोग जो हैं देवता लोगों से युद्ध करके उनको मार देते थे, अगर जब ये मरते थे तो ये वापस आ जाते थे। तो ये देवता लोग बहुत परेशान हो गए, तब उन्होंने बृहस्पति के जो पुत्र शुक्राचार्य के पास भेज के तो जो संजीव मंत्र का सीख के तो वापस जो देवता लोग जो हैं फिर ये मंत्र यूज करके फिर पावरफुल हो गए थे। जब ये दोनों चीज हुआ था कि दानव लोगों ने देखा कि अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है इन फ्रस्ट्रेशन तो धरती पे आ गए। धरती पे आके अलग अलग, जैसे आजकल भी बोलते हैं पॉलिटिशियंस, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उस समय भी राजा, अलग अलग राजा अलग अलग जगह पे जन्म ले लिया, लेके भारत भूमि पे ऊपर बहुत भार पड़ गए। तो इसलिए हम लोग जानते हैं शुरू शुरू में भूमाता जो है जाके ब्रह्मा जी के पास स्तुति करते हैं। हाँ, उसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम आएंगे बचाने के लिए, तो इसीलिए कृष्ण जी आए हैं इधर। अब ये उस तो द्वापर युग की बात हो गया, अभी का क्या है? अभी अभी क्या है? अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। इस कलयुग के अंदर भी वैसे ही जो दानव जुष्कृतन लोग हैं और भक्त लोग भी हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन भगवान भी अवतरित हो चुके हैं। समय किसके नाम रूप में अवतरित हो चुके हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अवतारित हो चुके हैं भगवान। जैसे सतयुग में बताते हैं जो दानव और देव अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे, अब जैसे भूमि के ऊपर जो माँ भूमि के ऊपर जो प्लैनेट्स होते थे वहां पर देवता रहते थे और उसके नीचे दानव लोग रहते थे। सो हम लोगों को बहुत उस समय जो सत्ययुग के अंदर लोगों को पता था कि कौन क्या है किधर रहते थे। और उसके बाद त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में जो देव और दानव अलग अलग कॉन्टिनेंट्स उसमें भूमि में आकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने लगे, जैसे राम इधर और रावण लंका के अंदर, ऐसे अलग अलग डिवीजन होता था। और द्वापर युग में क्या हुआ? द्वापर युग में देव और दानव दोनों थे, किसमें? एक ही परिवार के अंदर। कुरुवंश के अंदर दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव, देव और दानव और देव। और अब कलयुग का क्या हुआ? कलयुग के अंदर यह प्रॉब्लम है कि कलयुग के अंदर एक ही जीव के अंदर दोनों देव और दानव निवसित रहते हैं। अब इसका क्या किया जाए? जय श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की जय। सो अब क्या किया जाए? हाँ, उस समय तो भगवान कृष्ण के लिए बहुत आसान था, आते थे सबको मारते थे, उनको पता था कि कौन डीमन है कौन नहीं है। अब कलयुग के लिए क्या हो गया? कलयुग में अगर ऐसा करना हो तो सबके अंदर है तो सबको मारना पड़ेगा, है ना? इसीलिए भगवान इस समय कलयुग के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये चीज हम लोगों को सिखाने के लिए कौन आए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे। ये चीज तो हमारे अंदर भी वो जो डिमोनिक क्वालिटीज होते हैं वो भी हैं। जब तक वो चीज नहीं निकालेंगे हम लोग जो है देव और डिवोटी नहीं कहला पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस जो श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को सिखाया है कि चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना, तो एक ही उपाय है इसके दूर जाने के लिए। हम लोगों को दूर किसी और से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को अपने से भयभीत होना सबसे पहले तो चाहिए। लेकिन हम लोग किसी दूसरे के अंदर ही दोष देख रहे हैं, दूसरे के अंदर ही ये जो डिमोनिक क्वालिटीज होते हैं वो ही देख रहे हैं। वो खुद दूसरे के अंदर दोष देखना ही एक सबसे ज्यादा दोष है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। हम लोग वी आर ऑल कंडीशन, हमारे हर एक के अंदर ये जो है देव और दानव छिपे हुए हैं। तो ये दानव को निकाल के फेंकना है, तो ये हमारा प्रोसेस जो है बस यही है, दानव जो अंदर है हमारे उनको निकाल के फेंकना का चीज है। इधर महाराज वसुदेव जी कैसे भय से दूर जाते हैं, जैसे भगवान सामने आते हैं, भगवान सामने हैं और उनको उससे भयभीत जो भय था उनका सब दूर हो गया। और हमारे सामने भी हैं, इधर हमारे सामने श्री श्री राधा गिरिधारी जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं और गौर नेताएं हैं, लेकिन हमारे अंदर भय है कि नहीं? भय है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमें इतना विश्वास है नहीं, हम उनको भगवान मानते नहीं हैं, हम उनको भगवान मानते नहीं हैं। तो यही है, अलग अलग फेथ बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किसका कितना स्ट्रांग फेथ होता है और उसको भगवान जो है, जैसे भगवत गीता में भी बताते हैं, जितना फेथ श्रद्धा उनके ऊपर रखते हैं भगवान उसी की तरह रिसिप्रोकेट करते हैं। ये जो डिमोनिक क्वालिटी बताते हैं, दानव क्वालिटी क्या है असली में, सबसे पहले हमें ये पहचान होना चाहिए कि अंदर, तभी हम उसको निकाल फेंके भय से दूर हो सकते हैं। क्या चीज है डिमोनिक क्वालिटी? डिमोनिक क्वालिटी का मतलब है, बहुत सिंपल है, हा? कि जैसे इंग्लिश में बताते हैं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, सिंपल। कंट्रोलर मैं ईश्वर हूं और ये सब जो भी दुनिया है ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए बना हुआ है, ये करना है मेरे को। और जब ये नहीं होता है हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी भी हम सोच लीजिए, कभी भी डेली हर एक क्षण हम देखते हैं कुछ ना कुछ हमें इरिटेट करता है, कुछ ना कुछ हमें डिस्टर्ब करता है। अगर हम एनालाइज करते हैं उसके अंदर क्यों ये होता है, तो उसके अंदर ये दो ही कारण है, क्योंकि हमसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, उससे उसका क्या परिणाम है, हम लोग उसको इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहे, बस दो ही कारण है और कुछ नहीं। सिंपल से एग्जाम्पल से कर सकते हैं, जैसे दो छोटे बच्चे प्रसादम के लिए बैठे हैं, दोनों के सामने थाली है, ठीक है, दोनों के सामने थाली है और जो भक्त आके प्रसाद रखते हैं, एक मिठाई रखते हैं, एक समोसा रखते हैं, दूसरे प्लेट में भी एक समोसा रखते हैं, मिठाई रखते हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं और एक बच्चा क्या करता है, तुरंत दूसरे के प्लेट से अपना खत्म कर देता है, दूसरे के प्लेट से मिठाई लेके खा लेता है। अब ये जो बच्चा जो है इसको क्या, ही गेट्स डिस्टर्ब, क्यों, व्हाई डज ही गेट डिस्टर्ब, क्योंकि उस बच्चे को उस थाली जो है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो थाली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो थाली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, तो वो जो उसका स्वादन जो है, जो मिठाई, तो वो नहीं किया, तो उनका जो इंद्र तृप्ति नहीं हो पाया। सो इट्स बेसिकली दो चीज है, कंट्रोल एंड एंजॉय। अब ये चीज बड़ों में भी ये चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये छोटे बच्चों का जो एग्जाम्पल है ना, हम लोगों के बड़ों का भी यही चीज है। अगर आप बाहर देखा जाए, पॉलिटिशियंस हो कुछ भी हो, हर एक के अंदर यही प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग कोई डिस्टर्बेंस होता है ना, बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये पूछना चाहिए कि हम किस चीज का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, उससे क्या परिणाम, क्या नहीं मिल रहा मेरे को, क्या स्वादन नहीं हो रहा मेरे को, ये चीज खाली देखना है। आप कुछ भी सोचिए, ये दो चीज से चलता रहता है। हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया जो है हमारे से चलता नहीं, हम जैसा चाहते हैं सब दुनिया ऐसे चलना चाहिए, नहीं, ये तो भगवान चलाते हैं, जब भी हमें दिखता है कोई चीज कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें डे टू डे होता है, सब चीज हमारे जैसे जो पसंद है ऐसा होता नहीं है, जैसे नहीं होता है हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये ऐसा होना चाहिए था, उसने ये किया, उसने ये किया, नहीं, ये तो सब भगवान कंट्रोल पे है, हम लोग कुछ भी नहीं है इसमें। और ये तो हो गया डिमोनिक मेंटालिटी, और अब दूसरा, अब स्पिरिचुअल मेंटालिटी क्या है जो आध्यात्मिक, तो उसका भी उदाहरण शास्त्र में भागवत में ही है। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए, प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ, जो हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया है, गिन लीजिए कितने कष्ट हुए हैं, तो इसमें प्रहलाद महाराज डिस्टर्ब हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, वहां पर भी हिरण्यकश्यपु को ये करने के लिए परमिशन कौन दिया था, भगवान कृष्ण ने, ठीक है, अपने से तो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे समझ सकते हैं भगवान कृष्ण ने परमिशन दिया और प्रहलाद महाराज को कष्ट, हिरण्यकश्यपु उनका जो पिताजी हैं उसे हो रहे हैं, लेकिन भगवान ये सिखा रहे हैं। आप इधर देखिए प्रहलाद महाराज के साथ क्या हो रहा है, प्रहलाद महाराज से तो विचलित नहीं हुए, ही इज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, जितने भी हुए ही इज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वो फुल्ली सरेंडर थे, शरणागति थे और हमेशा भगवान का नाम लेते थे, तो इसलिए नहीं हो पाए, तो वो जानते थे कि जो भी हो रहा है ये भगवान के आज्ञा से ही हो रहा है कुछ। तो अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो तो प्रहलाद महाराज हुए, हमारा क्या है, हम तो प्रहलाद महाराज नहीं है, हमारा क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है हम लोगों के लिए बहुत आसान तरीका दिए हैं, तो हम लोग के लिए 16 माला जपा करने के लिए, संघ में रहने के लिए, और उनका जो ग्रंथ जो दिया है उनको पाठ पढ़ने के लिए, और प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और विग्रह सेवा करने के लिए, ये सब हम लोगों को सिखाया है, ताकि हमारे पास इतना फेथ और इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जैसे प्रहलाद महाराज के पास था, तो हम लोग भी धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है सबके लिए है। तो जब भी हम लोगों का साथ कोई चीज होता है तो कंटेम्पलेशन, जो मनन, तो जस्ट होल्ड बैक एंड थिंक कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण कौन है, दूसरा है कि मैं हूं और कोई और है, क्या है। तो हमेशा जब देखेंगे उसके अंदर दो ही चीज है, कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये डिस्टर्बेंस रहता है। हमेशा ये है कि हम आई एम नॉट द कंट्रोलर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है हमें। तो भक्ति, जैसे श्रील रूप गोस्वामी हम लोगों को बताते हैं उत्तम भक्ति क्या है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति। तो इसमें ज्ञान और कर्म दोनों से दूर होना चाहिए। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान यही है दैट हम लोग वी आर नॉट द कंट्रोलर। और कर्म से क्या है, कर्म से दूर कैसे, एंजॉय। उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सबसे पहले ये दोनों क्वालिफिकेशंस हैं। डिस्टर्ब जब होते हैं, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं हम लोग, कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्ञान क्या है और कर्मी की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इंद्र तृप्ति चाहिए हमें बस। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि अगर हमें विचलित से दूर रहना है कोई किसी परिस्थिति के अंदर, ज्ञान कर्म दोनों से दूर रहना चाहिए। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान ये है कि ये सब चीज जो है भगवान के अनुसरी चल रहा है। भगवान जो भी होता है एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। श्रील प्रभुपाद सीधा बताते हैं कोई चीज कभी भी किसी के साथ होता है तो इनऑस्पिशियस नहीं है। ऐसे कई कहानियां हम जानते हैं, जो भी चीज होता है वो अच्छाई के लिए होता है, ये सब कहानियां हम सुन चुके हैं, जानते हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता है, ये सब दूसरे के ऊपर लागू होता है। जैसे हम लोगों के पास आता है हम लोग इसको लागू नहीं कर सकते, वी गेट डिस्टर्ब, उसका यही कारण है। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग कंट्रोलर और एंजॉयर बनना चाहते हैं देन वी डेवलप एनवियसनेस, ईर्ष्या। किसके प्रति? भगवान के प्रति। जैसे लोगों को जैसे बताते हैं कि ईर्ष्या है, बोलते नहीं ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या नहीं तो क्या हुआ? कंट्रोलर तो एक ही है। अगर हम लोग जैसे कंट्रोल करना चाहेंगे तो उसके अंदर ईर्ष्या तो हुआ है। तो जैसे एनवियसनेस हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस के ऊपर बाधा पड़ जाता है। तो कई चीज हम लोग कई चीज हमारे जो डे टू डे लाइफ में होता है, कई बारी शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं होता है, कई बारी भक्तों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, कई बारी दुनिया में देखते हैं ये भी बोलते हैं अरे भक्त लोगों से बाहर के लोग अच्छे हैं। कई बारी हमारे दिमाग में आता है, आता कि नहीं आता है? हर एक के साथ आता है। तो ये चीज इधर श्रील प्रभुपाद और भागवता में सब में यही बताते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कारण डिस्टर्बेंस का कारण है। शास्त्रों के ऊपर क्यों विश्वास नहीं होता है? शास्त्र बताते हैं दोनों चीज, कोई एक पॉइंट को लेकर दोनों तरह से बात करते हैं तब हमें शास्त्र के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बताया हमें कि शास्त्र जो है कंप्लीटली लेना है, जो जो हमें पसंद है वो लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम रहता है। चीज असली में क्या चीज है वो लेना है। और दूसरा जैसे जो कर्मी लोग जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो बहुत अच्छे हैं और भक्त लोग हैं वो खराब हैं, ये कई बार मन में आता है, उसका क्या कारण है? ऐसा है क्या? क्योंकि अगर हम ठीक से देखा जाए तो दूसरे लोग हमें पसंद क्यों होते हैं? वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, वो इंद्र तृप्ति करते रहते हैं और उसके अंदर हमें सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें वो पसंद क्यों आता है? क्योंकि ये हमारी बीमारी है। ये दूसरे भक्त के ऊपर ब्लेम करने में कोई वो नहीं है, लेकिन बीमारी हमारे अंदर है कि हम लोग जैसे वो कर रहे हैं वैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं। तो हम लोग ये दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि हमें नहीं हो रहा है, हमसे नहीं होता है, और हमारे भक्त लोग मदद नहीं करते हैं, बाहर के लोग आके हमें मदद करते हैं। नहीं, असली में देखा जाए, ये देखिए श्रील प्रभुपाद के जो फैमिली के अंदर अगर किसी का आंसू आता है, देखिए किसी का आंसू आता है तो पोछने के लिए कितने लोग होते हैं इधर। अगर बाहर देखिए, बाहर का रिलेशनशिप इज मेटेरियलिस्टिक। जब तक मेरे से आपसे मेरे को काम है, मेरे को कोई फायदा है, तब तक आई एम वेरी नाइस टू यू। जैसे वो चेंज हो जाता है उनका जो व्यवहार जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये कई बार हमारे दिमाग में आता है जो गलत चीज है कि बाहर के लोग बहुत अच्छे हैं, डिवोटीज का बहुत खराब व्यवहार है। नहीं, कृष्ण भगवान खुद कहते हैं ये सबसे बड़ा टॉलरेंस पता क्या है, सबसे बड़ा टॉलरेंस क्या है? सबसे बड़ा टॉलरेंस यह है कि भक्तों के संग रह के भक्तों की निंदा नहीं करना, ये सबसे बड़ा टॉलरेंस यह है। ठीक है, तो जो भी होता है भगवान के परमिशन से ही होता है। तो भक्त भी जो कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ये जब तक हमारे अंदर ये जो ईश्वर भाव और इंद्र तृप्त करने का जो इच्छा जब तक नहीं जाता है, वो डिस्टर्बेंस नहीं जाता है, और हम लोगों का सरेंडर होने का कोई प्रसक्ति नहीं आता है, जब वो सरेंडर होने का प्रसक्ति नहीं आता है तो ये जो फियरलेसनेस जो भय जो होता है, भय से दूर तो जा नहीं सकते हैं। तो एक बारी शिला प्रभुपाद से भी, शिला प्रभुपाद ने पूछा था कि हाउ डू यू नो दैट, कैसे जानते हैं कि कोई बहुत एडवांस हो गया है, कैसे जानते हैं? तब शिला प्रभुपाद ने सीधा बताया कि जैसे कोई आदमी व्हेन इज रेडी टू डाई एनी मोमेंट, मृत्यु से भय नहीं रहता जिसको, वो स्पिरिचुअल एडवांस है। तो दैट सॉर्ट ऑफ फियरलेसनेस, फियर तो सब में है। एक चींटी और एक हाउस फ्लाई जो मक्खी है, मक्खी को देखिए, मक्खी के पास जैसे हाथ जाता है उठ जाता है, तो फियर ऑफ डेथ सब में है। कई लोग नास्तिक लोग बोलते हैं कि हमें मृत्यु से भय नहीं है, मृत्यु से भय नहीं है तो फिर क्यों, वाई दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ सो मच। भय तो सबको है, मृत्यु से भय तो सबको है। तो ये फेयरलेसनेस आने के लिए तो वी शुड गेट सरेंडर्ड टू कृष्णा, वो चीज है। मृत्यु तो कभी भी हो सकता है, अगर रात को भी अगर मृत्यु आता है, हमारे पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए टू रिमेंबर द कृष्णा। यही साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं इधर। और तीसरा चीज, हम लोग ये डर लगा रहता है कि हमारे अंदर एक और जो डिमोनिक क्वालिटी, जो मेन डिमोनिक क्वालिटी होता है, फॉल्ट फाइंडिंग। तो फॉल्ट फाइंडिंग का क्या है, दूसरे को अंदर गलतियां देखना। तो ये डिमोनिक क्वालिटी कैसे हुआ, इस डिमोनिक क्वालिटी कैसे हुआ? अब मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं, और कोई रास्ते में चल रहा है, तो कुत्ते रास्ते में जो होते हैं भौंकते हैं, क्यों भौंकते हैं? वया दे बाकी, हमारे अंदर कोई कमी देखा उन्होंने, इसलिए भौंक रहे हैं वो। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। तो ये कमी देखना तो बहुत आसान है, हर एक दूसरे में देख रहे हैं, हर एक, ये तो स्वभाव है। तो ये तो तुलना की गई है कि जो इवन डॉग, जो आदमी लोग जब चलते हैं भौंकते हैं तो क्या है, कुछ कमी उन्होंने देखा है, उनके नजर में कोई कमी है, इस आदमी में कोई कमी है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग हुआ है चीज। फॉल्ट फाइंडिंग जो है हमारे जो प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है चीज। तो इसमें क्या होता है कि हम कृष्ण कथा की जगह जो उस भक्त का जो जो गुणगान की जगह जो दूसरे का जो फॉल्ट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमारा सेवा खत्म हुआ तो फिर हम लोग ये करते रहते हैं। तो इसमें ये आचार्य लोग बताते हैं, वो भी प्रजल्पा है, वो भी प्रजल्पा है। जैसे कृष्ण कथा और भगवान और भक्त के गुणगान जहां पर नहीं होता है, बाकी सब चीज प्रजल्पा होता है। तो इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम लोग का बीमारी जो डिसीज कंडीशन है, ये कंडीशन प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ, बहुत आसान तरीका दिया हुआ शिला प्रभुपाद ने नाम जप का, लेकिन कर नहीं पाते हम लोग। हमारा क्या है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के लीला में देखेंगे, एक बार जब उनका जो सर्वेंट डेली हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद लेके जाते थे, शिला हरिदास ठाकुर के पास, एक बार जब लेके गए थे, शिला हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, नाम जपा कर रहे थे, हरि नाम का जपा कर रहे थे, तो प्रसाद उन्होंने दिया कि हाँ जगन्नाथ महाप्रसाद है, महाप्रभु ने भेजा आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं लेंगे अभी। हाँ, तो जब पूछा कि क्यों, मेरा जपा जो जो राउंड्स है वो पूरे नहीं हुए मेरे। शिला हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा राउंड्स नहीं हुए, मेरा जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो नहीं हुए हैं। तो उन्होंने उस समय क्या किया, प्रसाद आया है, प्रसाद और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ा सा फिर नाम जपा करते रहे। तो ये जाके चैतन्य महाप्रभु जी को बताया गोविंद जी ने कि शिला हरिदास ठाकुर जी हैं, बीमार हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड। हाँ, शिला हरिदास ठाकुर जी जो हैं कितने राउंड्स करते थे, उसके बावजूद भी उनको मन में ये रहता था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जो नाम जपा जो है जितना अच्छा करना चाहता हूँ वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो डिसीज बीमारी है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय से बताया है कि हमारे जीव के अंदर ये है। तो हम लोग शिवशास्त्र कम भी पढ़ते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न कालः इतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृशं ह्या जानी नानुरागः। नानुरागः, कोई अनुराग है नहीं। इस बारे जो कलयुग के अंदर भगवान जो है नाम के रूप में अवतरित हो चुके हैं और सब जो उनके जो एनर्जीज हैं सब उसमें इन्वेस्टेड हैं। और कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस नहीं, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि नाम में कोई अनुराग नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो कलियुग का ये बीमारी है हम लोगों के साथ। शिला प्रभुपाद ने एक बारी जो मायापुर के अंदर थे तो बाकी जितने उनके भक्त लोगों के साथ ये पूछा, आप लोग कृष्ण को मानते हैं, आप सब लोग कृष्ण को मानते हैं? बोला कि हाँ। कृष्ण के ऊपर विश्वास करते हैं? सबने बोला हाँ। अगर आप लोग जितना मैं करता हूं कृष्ण के ऊपर, अगर आप सब लोग उतना विश्वास रखते हैं तो हम ये पूरा दुनिया को 18 दिन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये विश्वास शिला प्रभुपाद का। तो हमारे बीमारी यही है कि हमें विश्वास नहीं है नाम पे, और विश्वास नहीं है श्री श्री राधा गिरिधारी पे, विश्वास नहीं है हमारे जो संघ में जो रहते हैं भक्तों के ऊपर। तो यही प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये अपने आप नहीं दूर जा सकता, ये तो दूर जाना है तो फिर भक्त के कृपा के साथ ही जुड़ जा सकता है। जैसे हमारे अंदर कभी कुछ विचलित होता है मन, तो उसके अंदर यही कारण है कि किसी भक्त को हमने कुछ अपराध किया है, उसी के कारण ही होता है। अगर प्रोग्रेस करना है एक ही उपाय है, भक्त के साथ ही। भक्ति हाथ दे सकता है ऊपर उठाने के लिए, कृष्ण डायरेक्ट आगे हाथ नहीं देंगे। भक्त जो है वही हाथ दे के ऊपर उठा के कृष्ण के पास ले जा सकते हैं। अपने बल से नहीं जा पाएंगे और कृष्ण डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। हम वसुदेव जी नहीं हैं, हम प्रहलाद नहीं हैं, हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं और हमारा क्या रास्ता है। ठीक है, तो इसलिए आपस में हमारा जो भक्तगण जो है प्रेम व्यवहार करके, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया और भगवान ने खुद बोला है, बेस्ट वे ऑफ टॉलरेंस इज टॉलरेटिंग अनदर डिवोटी। क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें क्या होता है, हमारे ऑलरेडी हमारे मन में हो चुका है। डिवोटी के मतलब उनको ये चीज होना चाहिए, अगर जैसे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, हम उनके अंदर उनके निंदा करना शुरू कर देते हैं, नहीं है। तो डिवोटी कौन होता है, उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। डिवोटी वो है जैसे कृष्ण का नाम एक बार भी ले लिया है, वो डिवोटी है। सिंपल, वो डिवोटी है। तो वो निंदा के पात्र तो है ही नहीं। और ऊपर से हमें कौन अधिकार दिया, कोई अधिकार नहीं भी दिया है। कृष्ण खुद नहीं करते, हम कौन होते हैं किसी का करने के लिए। तो ये जो स्वरूप लक्षण जो है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे कृष्ण का नाम लेते हैं वो भक्त हो चुके हैं, ठीक है। जो बाहर तटस्थ उनका जो लक्षण देख के हम उनके ऊपर निंदा नहीं कर सकते। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रगति करने के लिए भक्त का सहारा चाहिए, भक्त का कंधा चाहिए, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी हम लोग ये जो फियरलेसनेस जो भक्त फील करते हैं, हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट वगैरह हो? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की।